सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सवसाहुवं। अथ नत्वार्हतो क्षूण चरणान् श्रमणानपि तद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेश्यते। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है, जिसमें श्रावकाचार का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। इसको पढ़ते हुए हम पुरुष संख्या 95 पर आए थे। अब यहाँ विवाह आदि की बात जो बताते हैं, उसके विधि की बात, और उसमें भी अन्य ग्रंथों का वहाँ उन्होंने उद्धरण भी दिया है, जो जैन आगम नहीं है परंतु लौकिक की बात बताई है। हम यहाँ 97 पर पढ़ेंगे। बीच में लिखा है ना सेंटर का पैराग्राफ, आचार्य कहते हैं, क्योंकि बाकी तो कैसे विवाह क्रिया होनी चाहिए, क्या है वगैरह बातें, जब आचार्य कहते हैं यह गृहस्थाश्रम क्वचित क्वचित धर्म में है किंतु प्रायः पापमय है, इसलिए अंधे के रस्सी बटने के समान या हाथी के स्नान के समान है। हाथी का स्नान पता है कि नहीं पता ना? नहीं मालूम। नदी में हाथी स्नान करता है और बाहर आता है तो क्या करता है, वहां की धूल लेता है सूंड में और फिर अपने अंग पर छिड़कता है। जैसे हमारे यहाँ स्नान करके आते फिर पाउडर लगाते ना, वो धूल ही लगा रहे हैं, यानी नहीं नहाने के समान बराबर हो गया, इसलिए उसकी उपमा दी। तो कहते यह सर्वथा हितकर नहीं है। गृहस्थ के दो धर्म है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक धर्म लोक रीति के अनुसार चलता है और ये लोक रीति भी बदलती रहती है ना, हमने देखा था अभी जिस काल में ये बातें लिखी है उस काल के बाद अब तक कितना परिवर्तन हो गया। परंतु पारलौकिक धर्म आगम के अनुसार होता है, उसमें कोई देश काल की बात नहीं होती, वो तो तीनों काल एक ही होता है। सभी जैनों को ऐसी लौकिक विधि मान्य होती है जिसके पालन करने से सम्यक्त्व की हानि न हो और व्रतों में दूषण न लगे। सांसारिक व्यवहार तो स्वतः सिद्ध है, इसलिए आगम की आवश्यकता नहीं है। आगम की आवश्यकता तो संसार छोड़ने के लिए, विवाह कैसे करना, 97 पर पढ़ रही हूँ। 58 जहाँ लिखा है ना उसके ऊपर दो तीन लाइन, विवाह का भी यही लक्ष्य है, संसार में रमना नहीं। जो विवाह द्वारा जीवन को सुखी बनाते वे अंत में ग्रह त्याग कर अपने परलोक को भी सुधारने में समर्थ होते हैं। हाँ ये छोड़ दिया है क्योंकि वो क्या है विधि और उसमें कुछ खास बात नहीं है। ये बीच बीच में कितनी बातें ऐसी है ना कि वो तो बराबर नहीं लगती है कुछ कुछ तो। देखो 59 केवल हम श्लोक पढ़ेंगे अभी, 97 पर 59 नंबर का श्लोक। सत्कन्यां ददता दत्त सत्रिवर्गो गुहाश्रम गृहम ही गृहिणी माहुर नकुड्य कट संहतिम। देखिए सत्कन्या देने वाले ने धर्म अर्थ काम सहित गृहाश्रम दे दिया है, क्योंकि पत्नी को ही ग्रह कहते हैं, दीवार और बांस आदि के समूह को ग्रह नहीं कहते। फिर वो किसको देना क्या देना वो बातें उन्होंने बताई है, उसको भी हम छोड़ देंगे। 60 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, 98 पेज पर मिला ना। धर्म संततिम अक्लिष्टाम रतिम वृत्त कुलोन्नतिम देवादि सत्कृतिम चेष्टन सत्कन्याम यत्न तो वहे। धार्मिक संतान को जन्म देने या धर्म की परंपरा चालू रखने बिना किसी प्रकार की बाधा के संभोग करने व चारित्र और कुल की उन्नति तथा देव द्विज और अतिथि का सत्कार करने के इच्छुक श्रावक को सज्जन की सत्कन्या को तत्परता के साथ विवाहना चाहिए। अभी ये भी ठीक है, कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, आगे देखते हैं। 61 सुकलत्रम विना पात्रे भूहे मादिव्ययो वृथा कीटैर दंदश्यमानेन्त कोम्बुसे काद्रुमे गुण। उसका अर्थ है नीचे से दूसरा पैराग्राफ। सत्पत्नी के बिना गृहस्थ को भूमि सुवर्ण आदि का दान देना व्यर्थ है। जिस वृक्ष के मध्य भाग को कीटों ने बुरी तरह खा डाला हो उसे पानी से सींचने से क्या लाभ। किसी ने कहा है कुपुत्र वंश का नाशक है, कुभोजन करने से वह दिन ही नष्ट हो जाता है किंतु कुपत्नी से जन्म ही नष्ट हो जाता है। अब उसके नीचे पढ़ेंगे। विषय सुख के उपभोग से ही चारित्रों के तीव्र उदय का प्रतिकार हो सकता है, इसके लिए उसके द्वारा ही स्वयं विषय सेवन से निवृत्त होकर अपने ही तरह अन्य साधर्मियों को भी विषय सेवन से निवृत्त करना चाहिए, यह उपदेश देते। 100 नंबर का पेज, 62 नंबर की गाथा। विषयेषु सुख भ्रांतिम कर्माभिमुख पाकजाम छित्वा तदुपभोगेन त्याजयेत्तान् स्ववत् परम। अपना फल देने के लिए तैयार हुए चारित्र मोह के कर्म के उदय से मनुष्य को विषयों में सुख की भ्रांति होती है। सुख मिलता नहीं कहा, सुख की भ्रांति होती है और सुखों में उसमें विषयों में लगा रहता है। वो क्या मानता है, तो वह ये सुखरूप है या सुख के हेतु है ऐसा मानता है। उस भ्रांति को विषयों का सेवन करने से दूर करना चाहिए। ये कुछ अटपटी बातें लगती है, वो तो भ्रांति तो दूर होगी जब सही तत्व ज्ञान सही वस्तु स्वरूप पता चलेगा। एक कन्या देने लेने की बात यहाँ उस बात है, अभी उसको छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हमने बीच बीच का छोड़ लिया है, आप पढ़ लेना उसको, उसमें कुछ खास बातें नहीं है। ये नंबर 63 केवल हम अभी श्लोक पढ़ रहे हैं। दैवाल्लब्धम धनम प्राणे सहावश्यम विनाशी च बहुधा विनियुञ्जान सुधी समय कांक्षिपे। संसार ऊपर 63 नंबर का अर्थ। पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुआ धन प्राणों के साथ अवश्य नष्ट होने वाला है। उस धन को अनेक प्रकार से खर्च करने वाला गृहस्थ क्या साधर्मियों का तिरस्कार करेगा, अर्थात नहीं करेगा। यानी वो दाता के लिए बताए ना, वो तो अपने साधर्मियों को दान देगा, ये बात बताना चाहते हैं। विशेषार्थ, संसार में दैव की ही बलवत्ता मानी जाती है और पौरुष को गौणता दी जाती है। दैव के अनुकूल होने पर ही पौरुष भी सफल होता है, अतः धन की प्राप्ति में पुण्य कर्म का उदय प्रधान है। हम कहते भी है ना, पूर्व पुण्य से प्राप्त दैव है ने नसीब, कर्मों का उदय दैव में वही लेना। इसके साथ यह तो स्पष्ट है कि मनुष्य के मरते ही उसके लिए तो सब धन नष्ट ही हो जाता है। वो बोले उसके बच्चों के मिले या नहीं मिले उससे क्या है, उसके लिए तो नष्ट हुआ ना, वो तो सब छोड़ के चला गया है, उसके तो नष्ट हो गया पूरा धन। ऐसी स्थिति में जब गृहस्थ शादी विवाह भोग उपभोग में खूब धन खर्च करता है, तो यदि वह विचारशील है और लोक परलोक को समझता है, तो क्या वह धार्मिकों का विशेषतया मुनियों का यह कहकर तिरस्कार करेगा कि ये तो बात करने लायक भी नहीं है। यानी वो उनको भी दान देगा, साधर्मियों को भी दान देना, जो धर्मायतन है, स्थान है, स्थल है, वहां भी पैसा खर्च करेगा, क्योंकि उसके जाने पर तो ये तो यहाँ ही पड़े हैं, उसके परिणामों का ही उसको फल है। और उसे के जो हम कहेंगे ना निमित्त रूप से जो कर्म बंधे है वो जाएंगे, उसको फल मिलेगा भविष्य में उसका। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए बतलाते। विन्यस्य इदं युगीनेषु प्रतिमा सूजिनानिव भक्त्या पूर्व मुनि इनर चेत कुत श्रेयोति चर्चिनाम। जैसे प्रतिमा में जिन देव की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह इस युग के साधुओं में पूर्व मुनियों की स्थापना करके भक्ति पूर्वक पूजा करें, क्योंकि अत्यंत नुक्ताचीनी करने वालों का कल्याण कैसे हो सकता है। यहाँ तो कुमकुंद आचार्य ने स्पष्ट रूप से बताया है, शिथिल नुक्ता जी ने बहुत अति चर्चा करने से क्या होगा उसके, बहुत हम क्या कहते हैं उसको, नुक्ता जी नहीं मुझे बहुत बातें भी नहीं, बहुत उनकी परीक्षा करने से कहिए, चौकसाई चौकसाई, ये बात बराबर ठीक नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि कुनकुंदाचार्य ने, वो तो उनके भी बहुत पहले हुए थे, तभी उन्होंने शिथिलाचारों का डटकर निषेध किया था। और इसी पुस्तक में आगे जो व्रति है परंतु समय दर्शन नहीं है, तो उनको तो कुपात्र में गिना है। अब जिनके तो इन्हें आचरण भी बराबर नहीं है, भले समय दर्शन नहीं हो, कुनकुंदाचार्य ने या अन्य मुनियों ने स्वयं कहा है कि जहाँ समय दर्शन नहीं परंतु व्रत आगम के अनुसार है, द्रव्य लिंग यथोचित है, वहां तो मुनियों का आदर भी करना है, उनको आहार दान भी देना है, समय दृष्टि को भी उनके बंधन वगैरह करना है, तब द्रव्य लिंग यथार्थ हो तो। परंतु यहाँ तो अगर उसकी भी कोई बराबर नहीं, बहुत शिथिलाचारी है, तो उसमें तो यह पूरा निषेध हुआ। इसी की बात ये आगे के पूरे विशेषार्थ में उन्होंने बताया है। इसे थर्ड लाइन में है ना, देखो शिथिलाचार्यता बढ़ी है, इसी से मुनियों की आलोचना कुंकुंद जैसे महर्षियों ने अपने षट प्रावृत में की है, जो अष्ट प्रावृत है उसी को षट प्रावृत कहा। इन्हें अलग अलग लोगों के अलग अलग वहां मत बताए हैं, कुछ नहीं पहले छह अवेलेबल थे, बाद में तो दो मिल गए तो अष्ट पावर गए। आगे 65 नंबर में कहते हैं, भावो ही पुण्याय मत शुभ पापाय चा शुभ तद्दुष्यंत मतो रक्षे धीर समय भक्तितः। शुभ भाव पुण्य के लिए और अशुभ भाव पाप के लिए होता है, इसलिए वो इसलिए बराबर करना। भावों में विकार होने पर धीर पुरुष को जिनशासन के अनुराग से रक्षा करना चाहिए। परंतु ये बात जो है ना, किसी एक व्यक्ति में पूर्वाचार्य को मुनि की स्थापना करना, ये इसको निषेध किया, किसी व्यक्ति में किसी अन्य भगवान के अन्य यथार्थ मुनि की स्थापना नहीं हो सकती, फिर भी यहाँ इन्होंने लिखा है। अब आगे एक से दो पेज पर ये 66 नंबर का, उसके ऊपर की लाइन पढ़ते हैं, 65-66 के बीच में, ज्ञान और तप के पृथक पृथक तथा सम्मिलित रूप से पूज्य होने में तथा ज्ञानी तपस्वी के पूज्य होने में युक्ति देते हैं। ये ऊपर का 66 नंबर का हम श्लोक पढ़ेंगे। ज्ञानमर्चम तपोंगत्वा तपोर्चम तत्परत्वतः द्वयमर्चम शिवांगत्वा तद्वंतोर्चा यथा गुणम। तप का कारण होने से ज्ञान पूज्य है और ज्ञान की अतिशय का कारण होने से तप पूज्य। क्या कहने चाहते हैं? तप किसके होगा? जो सम्यक ज्ञानी है उसी के तप होगा, तो तप का कारण ज्ञान है इसलिए वो पूज्य है, और ज्ञान की अतिशयता होने से तप पूज्य है, अतिशय का कारण होने से, यानी तप के द्वारा ज्ञान की अतिशयता होती है और अधिक वो बढ़ता है, खिलता है। और मोक्ष का कारण होने से ज्ञान और तप दोनों पूज्य है, तथा ज्ञानी यानी ज्ञानवान वो ज्ञानी, तपस्वी यानी जो तप कर रहे वो तपस्वी, ज्ञानी तपस्वी और ज्ञान तथा तप दोनों से युक्त महात्माओं को जो जो गुण जिसमें अधिक हो उस गुण के कारण विशेष रूप से पूजना चाहिए, यानी ज्ञानी और तपस्वियों की पूजा करनी चाहिए, बस इतना ही। विशेषार्थ, ज्ञान और तप दोनों परस्पर में एक दूसरे के साधक है। यदि ज्ञानी न हो तो पूजा प्रतिष्ठा शास्त्र चर्चा वगैरह बंद हो जाए। ज्ञान के होने से ही सम्यक तप होता है, ज्ञान के अभाव में तो केवल काय क्लेश होता है। क्या कहा? जो सम्यक ज्ञानी है उसका तप है वो सम्यक तप कहेंगे, जो मिथ्या दृष्टि है वो कोई ऐसे तप अंगीकार करता है उसको तो बाल तप कहा है, बाल व्रत का कुनकुंदाचार्य ने कहा उसको। और केवल काय क्लेश होता है ने, शरीर को कष्ट उठाता है बस इतनी करता है, कोई कर दिखाता है यानी वो तो जिसको आदत से कहे अभ्यास से वो करके दिखाता है, परंतु उसमें उसको कुछ लाभ नहीं होता है। शारीरिक क्रिया होती है कुछ, बस इतने उपवास करके दिखाए उसने, ये तो आजकल तो राजकारण में भी चलते उपवास करने, तो किसने कितने उपवास किए, पर उसमें उसका आध्यात्मिक क्या लाभ हुआ?
ज्ञान होने से ही जो कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान होने से,
ज्ञान यानी आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान होने से ही सम्यक तप होता है। यहाँ ज्ञान जहाँ कहा है वो आत्मज्ञान की बात है, क्योंकि श्रावकाचार में तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि है ये बात लेके आगे चले।
लेकिन ये जो आप कहते हैं, मैंने आचार्य ने भी कहा कि उपवास करो या एकाशन करो या कम खाओ, उससे लोलुपता तो ठीक ही घटती है कि वो भी अपने मन
हमारे मानने का सवाल नहीं। एक बात, आपका प्रश्न जो है, आचार्य ने कहा है उपवास करो, एकासन करो, कोई व्रत अंगीकार करो, तो उसमें तो कुछ लोलुपता कम होगी क्या नहीं होगी? तो लोलुपता कम करने के लिए, संयम पालन करने के लिए, परंतु क्या समझ के कर रहा है, मैं इतना कर सकता हूँ।
वो तो उस स्वाभाविक को ऐसा ही होगा, अभी समझो कि उसने जहाँ तक बोध नहीं लिया है, वो नहीं किया है, वहाँ तक तो उसकी इस तरह की मान्यता होगी, और सीखने के बाद भी उस तरह की मान्यता थोड़े काल तक तो रहती है जहाँ तक दृढ़ नहीं होती।
नहीं बराबर है, परंतु इसका निषेध कहाँ किया?
हाँ, माने ऐसा लग रहा है कि क्लेश है करके निषेध हो रहा
देखो, है। देखो देखो, ज्ञान सम्यक तप होता है, ज्ञान के अभाव में तो केवल काय क्लेश होता है, उसके भी काय क्लेश तो हो ही रहे उसके। अगर वो रहते हुए अगर उसका अभ्यास सही हो रहा है और वो प्रयत्नशील है या उसी को मोक्ष मार्ग मान रहा है,
ख्याल में मोक्ष मार्ग नहीं मान रहा है, लेकिन
वो किसने बताया? हर एक की जीव के परिणाम अलग है, उसका निषेध तो किसी ने नहीं किया। संयम धारण करो ऐसा उपदेश भी देंगे कि इतना तो व्रत पालो, ये तो करो, मुनि स्वयं ऐसा बता रहे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी दिन दिया है कि श्रद्धान तो ऐसा रखो कि ये भी बंध का कारण है, ये तो मोक्ष का कारण तो है ही नहीं है, तो ये ऐसा श्रद्धान करते हुए इनको अंगीकार करने की बात तो बताई है, क्योंकि नहीं तो क्या 24 घंटे खाने पीने में लोलुपता रहेगी, उससे तो उसके रोक लगाई, परंतु उसके पीछे उसके परिणाम क्या है वैसे उसको फल मिलेगा। इतना करने से मैं धर्मी हो गया हूँ, मैं कुछ आगे बढ़ा हूँ, ये करने से मुझे थोड़ी मदद मिलेगी, यदि ऐसी मान्यता होगी तो शरीर की क्रिया से जीव को ये कुछ समझ निचर प्रकट होगी, ऐसा मानना पड़ेगा। ये सारे तत्व सात तत्वों के भूलों में वो आ जाते हैं। मूलतः तत्वों का अभ्यास सही होना चाहिए, यानी शरीर की क्रिया करने में, यानी वो जो अभी यहाँ उसके परिणाम भी है साथ में, बिना परिणाम के तो नहीं कर रहा है, फिर भी वो परिणाम का भी कर्ता बनकर बैठा है, फिर भी स्टार्टिंग में कहेंगे किसी जीव को, अभी जिसको बुद्धि नहीं चलती उसको तो कोई व्रत अंगीकार कराते, हम तो प्रथमानुयोग में यही बात पढ़ते हैं कि कोई अन्य मति भी था, भील भी था, उसको एक व्रत दे दिया और कालांतर से उसका जो कुछ आगे होनहार थी तो आगे उपदेश भी मिला। ये तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग उपदेश दिया जाता है। यहाँ भी चरणानुयोग के ग्रंथों में किसी एक बात को अपने को मुख्य करके बताना है तो उसी की मुख्यता से बताएंगे कि उसने ये व्रत किया उसको इतना फायदा हुआ, ऐसा कहते हैं ना।
अब
जो कह रहे हैं कि वो ऐसा संयम पालने से
लोलुपता तो उसकी
लोलुपता कम होगी।
आज आज समझो कि आठम है, चौदस है, हमारे घर में लीलोत्री नहीं होती, समझो कि खाली मैगी खाते हैं, तो हमारे को उसको खाने का धीरे धीरे विचार ही नहीं आता कि आज आठम है हम लोग नहीं खाएंगे, तो बाहर जाएंगे तो भी हम लोग उसको नहीं छुएंगे।
वैसे है ना, जिसने अभी रात्रि भोजन त्याग किया है तो उसके साथ कोई विकल्प ही नहीं आता कुछ मैं खाऊं पीऊं, वो तो वैसी आदत बन जाती है उसकी। परंतु इतना करना तो अच्छा है, परंतु मान्यता क्या रखनी है?
मैं कर सकता हूँ
वो करने के बाद मुझे, मैं धर्म की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, अगर ऐसे उद्योग की मान्यता होती है तो वो रात करते करते नितरात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न में है।
नहीं मैंने देखो, श्रीमद जी ने एक बताया है एक वाक्य में, त्याग विराग न चित्त मा था न ज्ञान, अटके त्याग विराग मा तो भूले निज भान। मैंने दोनों तरफ से बांधा है कि अगर आप त्याग और वैराग्य भी नहीं करोगे और अकेले ज्ञान 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 करोगे तो सूक्ष्म ज्ञान ही होगा। और
नहीं है,
देखो चौथे गुणस्थान वाले का नाम क्या है?
नहीं, वो अभिगत समय दृष्टि,
अभिरत समय, तो उसके लिए जो जो हमने देखा है अष्टम मूल गुण की बात है, अभक्ष भक्षण का त्याग,
बहुत बड़ी बात है,
वो तो पात्रता में आई ना, फिर भी वो अभिरति में आए, उसको तो हम व्रत नहीं कहेंगे।
यानी हम उल्टा सोचते हैं ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा होना है कि ये सहज रूप से होगा, मतलब सम्यक तो होना है जीव के, तो उसको सहज रूप से ऐसे परिणाम आएंगे
और
हम ऐसा मान लेंगे ऐसे परिणाम करने से सम्यक तो होगा, इसमें फेर है।
यानी वहाँ पहले
के साथ जोड़ते नहीं है हम, त्याग मेरा ये तो उनका सातवीं सात
आत्मसिद्धि की बात जो आपने बताई, तो मैं उसके आगे आपको दूसरी भी बात बताता हूँ। आपको मालूम होगा सूरदास नाम का एक कवि हो गया था,
सूरदास नाम का कवि हुआ था,
तो पहले वो बहुत सुंदर कविता लिखता था, जाने आने वाली स्त्रियों को देख के उसको बहुत स्फूर्ति आती थी, तो उसको पता लगा कि ये बात खराब है, तो उसने क्या किया, अपनी आंखें फोड़ ली। क्यों फोड़ी? कि मैं जाते रहते स्त्रियों को देखता हूँ और मैं उनके बारे में कविताएं करता हूँ, तो उसने आंखें फोड़ ली। तो आगे क्या हुआ मालूम है आपको? उससे भी अधिक श्रृंगारी की रचना है उसकी हुई, बिल्कुल। ये तो अभी सब फैक्ट है, यानी ये ऐसा हम नियम नहीं बना सकते, ऐसा मेरा कहना है, और हम उल्टा ही सोचते हैं कि ऐसा ऐसा संयम पालने से हमारे में वितरकता होगी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है।
वितरकता उससे नहीं होगी, उससे होगी ऐसा नहीं बात है, लेकिन क्या है कि वो उसके साथ में जरूरी है,
जरूरी नहीं वो होता है, आप जरूरी नहीं उस पर अपना वजन आता है। जो अभी जो तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, क्या जैसे पहले उसके बाह्य पदार्थों में रुचि थी, अभी वैसे है उसके परिणाम, वो अपने परिणाम को टटोल सकता है, अन्यत्र इधर उधर घूमने के परिणाम कहो, चीजें खरीदने के परिणाम कहो, या कोई खाने पीने के परिणाम कहो, जरूर उसमें अवश्य चेंजेस हो ही जाते हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो वो शुष्क ज्ञानी कहो, अब उसको नहीं हो रहा है, यानी वो तो केवल उसने वो ज्ञान का या नहीं शब्दों का विषय बनाया, तो वो अर्थ ग्रहण करता है, तत्वों का अभ्यास करता है, तो सहज रूप से ये सुमेल होता है,
और होना भी चाहिए,
चाहिए नहीं
होता है,
होता है, अगर नहीं होता है तो उसके पढ़ने में समझने में भूल, ये होता है और चाहिए वाला वजन वहाँ पर जाता है।
यानी चाहिए में हम पहले शुभ भावों में अटकना चाहते
हैं, यानी वो करना नहीं ये बात नहीं है, ऐसा नहीं कह रही कि मुख मत करो और केवल अभ्यास करो, ये कोई नहीं कह रहा है, परंतु जो अभ्यास में है, जो इसमें रुचि पूर्वक इस ओर मुड़ा है, तो उसके सहज रूप से ऐसे कोमल परिणाम होंगे, उसके बिना ये शास्त्र भी रुचेगा नहीं, और जिसको शास्त्र रुचता है उसके कोमल परिणाम अवश्य होते ही होते हैं। अब ये जैन तत्व परिचय पुस्तक, उसमें कहीं भी कुछ खाने पीने का कुछ लिखा नहीं उसके बारे में, केवल तत्वों की बात है, सामान्य ये निश्चय द्रव्य की बात है, सामान्य गुणों की चर्चा है, सात तत्वों की चर्चा है। अब मेरे पास ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने कोली लोग हैं, कितने मांसाहारी कोई लड़के, किसी ने उनको दिया था पुस्तक, मेरे से डायरेक्ट लेने वाले तो अन्य थे ही थे, उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, उसमें कहीं ऐसा उपदेश नहीं है।
देखो आपको शायद मालूम होगा कि दादर में चंद्रकांत भाई झवेरी नाम के ग्रस्त, वो यहाँ से पुस्तक ले गए थे, उसके बाजू में एक कोई एक्स वाई जेड फैमिली रहती थी। वहां के लड़के ने कहा मैं पढ़ू माने ना, तो पढ़ के आई। 8 दिन के बाद उसकी मम्मी आई कि आपने हमारे बच्ची को क्या सिखाया, हम ये मांसाहार नहीं करना चाहती है, तो उसके लिए दूसरा कौन खाना बनाएगा, आपको चाहिए तो जाके पूछ सकते हैं। मतलब ये है कि जब बात गले उतरती है सत्य बात, तो बाकी कुछ छोड़ना
वो सहज छूट जाता है, सहज छूट जाता है,
सहज होता है। और जो आप श्रीमद जी की जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल प्राथमिक लोगों के लिए,
यानी वो तो जनरल कथन है कि जिसके इसके बिना खाली शुष्क ज्ञानी होता है, यानी केवल बातें करने बैठता है और बाकी उसके सदाचार भी नहीं है, ऐसे भी लोग हम देखते हैं। मंदिर में जाएंगे या कुछ करेंगे उपवास भी करने वाले, और जो दुकान पे जाएंगे तो कैसा भी धंधा करेंगे उल्टा सीधा। हमें एक मिला था आदमी, मैं इधर बैठता हूँ तो शास्त्र के सामने मैं पंडित हूँ, और दुकान में जाता हूँ तो मैं कसाई हूँ। कसाई है ना, मैं गराय कुंभ के कैसा भी उल्टा सुलटा लूट सकता है। यानी अलग अनेक प्रकार के जीव होते हैं, उसकी चर्चा नहीं अभी हो। जो तत्व ज्ञान पढ़ता है और उसको सही रूप से समझता है, उसके परिणामों में अवश्य सुधार हो ही जाता है। अब उसको चरणानुयोग की भाषा में ये करो वो करो ऐसा उपदेश होगा, उपदेश का भी निषेध नहीं है। सामने वाले जीवों को कुछ कहेंगे अरे ऐसा मत करो, क्योंकि हमारे ही साधर्मी है, तो हम उसको किसी को प्रेरणा देंगे ऐसा करो ऐसा मत करो, तो ये तो उपदेश की भाषा है। और वो सब सुनेंगे तो सब उपदेश अंगीकार करेंगे थोड़ा ही, सुनने वाले भी सभी है। आचार्यों ने आप कहते आचार्यों ने उपदेश दिया, श्रीमद जी ने उपदेश दिया, कितने अंगीकार करने वाले हैं? जिसको अंदर से लगता है वही अंगीकार करेंगे। हम कहेंगे इनके उपदेश के कारण उन्होंने अंगीकार किया, इनके उपदेश के कारण उनको थोड़ा तो संयम हो गया। जो अंतरंग से ऐसे कोमल परिणाम वाले हैं उनके सहज ऐसा होगा। यानी हम कहीं पर ऐसा वॉटर टाइट ऐसा नहीं बना सकते कि ये पहले करना चाहिए ये, ऐसा नहीं है, ये दोनों ही साथ साथ चलते
होंगे। इसका ज्ञान होगा, उसके आचरण भी सुधरेगा, अगर उसने सही ज्ञान किया है तो। यानी आप बता रहे हैं ना, तो दो बातें जरा स्पष्ट बोलूं मैं।
बोलो
उज्ज्वला ने बहुत माइल्डली बोला, लेकिन मैं थोड़ा बोल्डली बोल रहा हूँ कि हमारा जोर है पहले आचरण में, तो बाद में ज्ञान में।
आचरण इसलिए है कि पात्रता के बारे में हम सोचते हैं कि पात्रता भी होनी चाहिए, बिना पात्रता आपको ज्ञान नहीं आने वाला।
ये आचरण से पात्रता आती
नहीं
बताया,
पात्रता जैसे आपने बोला ना कि कोई भी आदमी है अगर सम्यक दर्शन लेना चाहता है और कुछ भी इतर तितर खाता है,
देखो वहाँ तीन बातें
वो तो पहले ही मतलब बताई ना,
वो भी बहुत बड़ी बात है।
अन्याय अभक्ष्य भक्षण और कुदेव, तीनों का त्याग होना चाहिए।
वो तो सहज होता है भाई,
उसके बिना तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं।
बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसके सम्यक दर्शन होना है उसकी तीन बातें सहज रूप से होती है,
और फिर भी उसको हम सदाचार करें
हम ऐसा करें बाद में सम्यक दर्शन हो, ये ऐसी छीड़ी नहीं है सम्यक दर्शन की,
साथ में जाना चाहिए, वही
जाना चाहिए ही है।
जाता ही है और जाना चाहिए, इसमें अंतर है। आप सोचिए शांति से, तो हमारे भाई नहीं है, लेकिन मैं तो और अधिक बोलूंगा। आपने जो बात
कड़क भाषा में जो कहना चाहते
थे बोल दिया ना मैंने,
नहीं नहीं इसको नामधारी जैन का है ना, उसके बिना तो भावधारी होगा
मैं
नहीं।
मैं कहूंगा हाँ। श्रीमद जी ने जो आपके वाक्य बताया और स्वामी जी ने एक वाक्य बताया, राग करते करते वितरागता होगी ऐसा कदापि नहीं होगा, वो अधिक सही है। वो गलत है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये अधिक सही है।
और उसमें भी अनुयोग की भाषा बदलती है, और द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को हम समझना चाहिए पहले, फिर आप चाहे जिस भाषा में वर्णन करो।
वो जो बता रहे हैं वो चरणानुयोग
चरणानुयोग की भाषा है,
लेकिन उसमें हमारा जोर कहाँ आता है, इसमें पहले करेंगे तो वो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं।
यानी ये मान्यता की बात है, आचरण करने या नहीं करने की बात नहीं, ये मूल में मान्यता में सिद्धांत जो अपने ग्रहण होते हैं उसकी बात पहले पकड़ कर फिर आप इसका उपदेश कैसे करो, उसके बिना नहीं होता, ये होता नहीं है, या ये जिसके तत्वज्ञान का अभ्यास शुरू होता है या उसके प्रति भी जिसका झुकाव होता है, उसके सहज रूप से ऐसे कोमल परिणाम हुए बिना, धर्मानुराग हुए बिना वो सुनने को तैयार नहीं होगा। सुन रहा है उसके कोई ऐसे परिणाम है तो उसमें मन में भी ऐसे बातें सहज रूप से होती है, और ऐसे भी कोई कहेगा अरे ये भी ये ऐसा करो, नहीं कर भी पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं कि हम ज्यादा तप करें, हम ज्यादा थोड़े तप तप छोड़ो, अब हम ज्यादा थोड़े पाल रहे हैं मान लेते हैं,
सामान्य जो सदाचार जिससे
सामान्य की बात छोड़ो, जो थोड़ा अधिक पाल रहा है, अभी ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तीन टाइम सामायिक कर रहा है, प्रोशोध कर रहा है, अभी समय दर्शन नहीं हुआ है, तो क्या समझता है मैं थोड़ा और आगे बढ़ा हूँ इससे मुझे जल्दी हेल्प होगी, ज्यादा मुझे ज्यादा हेल्प होगी समय को प्राप्त, ऐसा उसके अंदर कहीं अभिप्राय में पड़ा है। निषेध नहीं है, अरे मुनि दीक्षा भी ले सकता है मिथ्या दृष्टि जीव, परंतु अगर मान्यता में यह है कि इसके कारण मुझे जल्दी संवन्नि जरा प्रकट होगी तो वो गलत है। सभी प्रहार यह मान्यता के ऊपर, मान्यता को सही रखे, इनको पालन करने का कहीं निषेध नहीं। अभी श्रेणिक राजा को मालूम नहीं था शाही समय दृष्टि था, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, मुनि दीक्षा क्यों नहीं ली, अनुव्रत भी नहीं लिए उसने, क्यों नहीं लिए आपको मालूम है क्यों नहीं लिए? हाँ तो नरकायु का बंद पड़ा है सत्ता में, उसके भाव ही नहीं होंगे उसके, साक्षात तीर्थंकर के सामने थे कि उनको मालूम नहीं था मुनि दीक्षा धारण करनी चाहिए, इतने ये सब प्रतिमाएं अंगीकार करनी चाहिए, क्यों नहीं सामयिक करता था, क्यों नहीं बाकी व्रत अंगीकार किए उसने, ये सहज ऐसा, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत होते हैं, हमें डिटेल आगे की मालूम नहीं है ना, तो हम केवल देखा देखी क्या कर रहा है इसकी चर्चा देखते हैं।
मैं तो इसका एंड करना चाहता हूँ, उसने ये सातवें में ये लिखा और आठवें में ये लिखा, ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे त्यां त्यां समुद्रति, त्यां त्यां देते आचार्य आत्मार्थी,
बराबर आत्मार्थी है, उसके सहज रूप से वैसे आचरण हो ही जाते हैं, हमें मूल
सिद्धांत
और पहले उसमें ज्यादा जोर था उसमें
बराबर आठवीं गाता है साथ में ये थी,
मैं क्या कह रहा था, आपने बोला मैं एंड करना चाहता हूँ, मैं बोला नहीं तो डॉक्टर साहब बोल गए, हमारे व्यूअर ने आप हमारे समझने में थोड़ा थोड़ा ये होता है, कोई बात नहीं, अच्छा क्या आपने टॉपिक खोला,
ये तो आगे का बहुत चला गया तो नया कुछ खुल
क्या है कि अपनी मान्यता सही हमने कर ली तो दूसरा आगे करने, अभी से शुरू से इसको हम समझ लेंगे, अच्छी बात।
यहाँ क्या कह रहे थे कि ज्ञान
यहाँ का क्लेश की बात की,
यहाँ का क्लेश आप कहते हैं यहाँ भी काय क्लेश कहा है और वहाँ मुनियों के तपों में भी काय क्लेश कहा है, तो ये तो मिथ्या दृष्टि का है ज्ञान के अभाव में, यानी वो शरीर को सुखाना है कहो या शरीर को तकलीफ, यानी कोई तकलीफ अंगीकार करना, बस इतनी बात होती है,
और ये हजारों उपवास करने पेट में खड़ा पड़े वो काय क्लेश,
नहीं उनका ये प्रश्न है कि मुनियों के भी उसमें काय क्लेश है, वहाँ तो वो तो जानबूझकर अंगीकार करते हैं इसलिए कि उस वैसी परिस्थिति में भी उनका डिगता नहीं है, स्वरूप स्थिरता और बढ़ती है, इसलिए वो उनके स्वरूप स्थिरता में और आगे जैसे ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो और अधिक दृढ़ता पूर्वक अपने में स्थिर हो जाते हैं, इसलिए वहाँ काय क्लेश का।
मैं दूसरी पहाड़ पे जाके पत्थर पे बैठते हैं और वहां तप करते हैं, वो बाकी सब बाकी आप नहीं जानते, ऐसे प्रतिकूल अवस्था में भी शरीर से मैं भिन्न हूँ ऐसा अपना परिणाम हो और अधिक से अधिक सुनिश्चित हो, उस समय बाहर में जो हो रहे हैं उनके लिए बताई देती है वो, अभी आपको मालूम नहीं एक पैर पे खड़े रह के भी तप करने वाले हैं, एक गाय का दूध निकालने के लिए जैसे बैठता है ना वो दूध निकालने वाला,
तो
वाला वैसे क्या कहते हैं पोजीशन में कब करते उसको नायक क्लेश नहीं होता लेकिन जान बूझ कर नायक को क्लेश करते हुए अपने स्वरूप में एकाग्रता करना उसको तब था ये बाह्य तब में आया है
अभी जिसके जिसके स्वरूप में स्थिरता है स्वरूप का कुछ पता ही नहीं आता पता ही नहीं वो उसका लक्ष्य कहाँ होगा वो क्लेश के तरफ होगा और मुनिराजों का क्लेश का लक्ष्य छोड़कर अंतरंग में वो तो आनंद का अनुभव कर रहे प्रचुर आनंद का और ये तो दुख का वेदन कर रहे हैं ये डिफरेंस है दोनों में मिथ्या दृष्टि के और मुनियों के इसी तरह 103 पेज पर आए ज्ञानाराधन स्वयं एक तप है ज्ञान की आराधना का अर्थ क्या है सम्यक ज्ञान प्राप्त करके उसमें दृढ़ता होना 103 अंतरंग के तप के भेदों में स्वाध्याय को तप कहा है तथा तपस्या के द्वारा ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है
ये तो हाँ
ये तो अंतरंग तप स्वाध्याय वो विसर्ग ध्यान वगैरह बताए ना वो ध्यान की अवस्था में प्राप्ति होती है तथा तप और ज्ञान दोनों से मुक्ति मिलती है इसलिए ज्ञान तप ज्ञानी तपस्वी ये सभी पूज्य है ज्ञानी के बाद एक कॉमन लगा तो ज्ञान पूज्य है तो ज्ञान के धारी ज्ञानी भी पूज्य है तप पूज्य है तो तप के धारी ऐसे तपस्वी भी पूज्य है सोमदेव सूरी ने भी कहा है कि तप के बिना अकेला ज्ञान भी आदर के योग्य है और ज्ञान के बिना अकेला तप भी पूज्य है ये ज्ञान के बिना इन्हें अधिक सूक्ष्म ज्ञान के बिना ऐसा वो मिथ्या सम्यक ज्ञान के बिना वाला ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान और तप दोनों होते हैं वह देवता है और जिसमें न ज्ञान है और न तप है वह तो केवल स्थान भरने वाला है अब आगे देखेंगे अब आगे कहते हैं मिथ्या दृष्टि के सुपात्र को ही आहार दान देने से उत्पन्न हुए पुण्य के फल की विशेषता और अपात्र दान की व्यर्थता बतलाते हैं अब यहाँ क्या सिद्ध होता है ये पात्र कौन है तो उत्तम पात्र तो मुनिराज है तो उसमें वो तो बिल्कुल वो सही ही होने चाहिए ख्याल में यही बात यानी चाहे जिसमें वो शिथिलाचारी में हम उसकी मान्यता करो और दे दो उसको तो पात्र नहीं कहा अब यहाँ बताएंगे पात्र कौन अपात्र कौन कुपात्र कौन 67 नंबर ऊपर पढ़ेंगे न्यग मध्योत्तम कुत्स्य भोग जगति भुक्तावशेषाद् वृषात् तादृक् पात्र वितीर्ण भुक्ति रसुद्रोग देवो यथा स्वं भवेत् सदृष्टिस्तु सुपात्र दान सुकृतो द्रेकात्सु भुक्तोत्तम स्वर्भूर्मर्त्य पदो श्रुते शिव पदम व्यर्थस्त्व पात्रे व्यय न्यक मध्य और उत्तम देखो जघन्य पात्र मध्यम पात्र उत्तम पात्र तथा कुपात्र को दान देने वाला मिथ्या दृष्टि शब्द डाला है समय दृष्टि नहीं जघन्य भोग भूमि अभी एक क्रम से लेना जघन्य पात्र को दान देने वाला जघन्य भोग भूमि में मध्यम पात्र को देने वाला मध्यम भाग भूमि में उत्तम पात्र को दान देने वाला उत्तम भोग भूमि में और कुपात्र को दान देने वाला कुभोग भूमि में भोगने से बाकी बचे पुण्य से यथा योग्य देव होता है यानी वहां उत्पन्न होता है और बाकी देव में चला जाता है वहां यानी भले तीन भोग भूमि का हो या कुभोग भूमि का हो ये देव में ही जाते हैं सारे चीज सारे मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में जाएगी वहां से भोग भूमि में से और समय दृष्टि है वो सौधर्म ईशान में जाएगी ये तो भोग भूमि में समय तो की भी वहां कोई गुंजाइश नहीं वो तो भवनत्रिक में जन्म हुआ नहीं होता किंतु समय दृष्टि सुपात्र दान से होने वाले पुण्य के उदय से उत्तम भोग भूमि महर्धिक कल्पवासी देव और चक्रवर्ती आदि पदों को यथेष्ट भोग कर मोक्ष पद को पाता है, परंतु अपात्र को दान देना व्यर्थ है। देखो यहाँ क्या कहा, यहाँ जघन्य मध्यम की बात नहीं की, उत्तम भोग भूमि। देखो समय दृष्टि तो समय दर्शन के बाद तो मनुष्य का भोग यानी उसके मनुष्यायु का बंधन नहीं करेगा, परंतु जिसने पहले मनुष्यायु बांधी है, हाँ बाद में जो समय दृष्टि हुआ है यदि वो क्षायिक होता है तो उत्तम भोग भूमि में जन्म लेता है। इसके लिए हम उत्तम भोग भूमि की बात की। इसलिए समय दृष्टि को सुपात्र दान से होने वाले पुण्य के उदय से उत्तम भोग भूमि मुहर्दिक कल्पवासी देव तो उसका समय तो गिर जाएगा, मिथ्या तो में चला जाएगा। यदि तीन पल्ले की आयु बंधी हुई तो जाएगा मिथ्या दृष्टि वहां, परंतु वहां जन्म लेने वाले जो सम्यक तो के साथ जाते हैं, भले वो तीरियंच हो या मनुष्य हो, क्षायिक होने की कंडीशन, वैसे ही नरक में जाने वाला, नरक में जो सम्यक तो लेकर जाता है वो क्षायिक ही होना चाहिए। देखो इसका अर्थ फिर दोबारा देखते हैं। जिसने पहले नरकायु बांधी हो, मनुष्यायु बांधी हो, तीरियंच आयु बांधी हो, उसके सम्यक तो होने में कोई बाधा नहीं, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, परंतु सम्यक तो लेकर अगर उसको मनुष्य में जाना है या तीरंच में जाना है नरक में जाना है तो क्षायिक होना आवश्यक है। यहाँ कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि हो जाता है तो यहाँ से वो विदेह में नहीं जाएगा सम्यक के साथ, विदेह में वो मिथ्या या तो मिथ्या तो में जाकर जाएगा अगर मनुष्यायु बांधी है, देव से और नरक से तो जा ही सकते, मिथ्या दृष्टि भी जा सकते, समय दृष्टि भी जा सकते। हमें विदेह की महिमा आती है, अपनी कभी महिमा ही नहीं आई भाई। इन्हें जीवों को निमित्त का ही महात्म्य आता है, वो निमित्त रूप से महाविदेह वाले भगवान हो या आचरण हो भाई, अपनी स्वभाव की महिमा उस जीव को कभी आई नहीं, ये उसके मूल में भूल है। ये भी हम अभ्यास करते हैं, इसके द्वारा तो स्वभाव की महिमा आए तभी अंतरंग में उपयोग ज्यादा जाएगा। ज्ञान की ऐसी विशेषता है अपने उपयोग की, यानी अपना ज्ञान का लक्ष्य वहां ही जाता है जहां क्यूरियोसिटी हो, जहां उत्सुकता हो, जहां विशेषता भाषित हो। अभी नीचे बैंड बजता है तो यह जाके जाते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो उसकी अधिकता भाषित होती है। तो अपने और क्यों जाएगा उपयोग जीव का, तो सबसे दुनिया में सर्वोत्कृष्ट अगर मैं स्वयं हूं ऐसा भाषित हो तो उपयोग वहां जाएगा और वहां टिकेगा। तो यहाँ तो ये सम्यक तो की क्षायिक सम्यक तो होना आवश्यक है, यानी पहले जिसने आयु बांधी है मनुष्य की बांधी हो, बाद में सम्यक दृष्टि हुआ है और वो सम्यक तो के साथ अगर उसको मनुष्य होना है तो यहाँ कर्मभूमि का मनुष्य सम्यक्त्व के साथ कर्मभूमि में नहीं उत्पन्न होगा, भोगभूमि में जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, वो क्षायिक होना आवश्यक है। तो इस पंचम काल में तो क्षायिक होगा नहीं, तो अभी का कोई मनुष्य यहाँ से भोगभूमि में जाएगा तो भी मिथ्यात्व के साथ जा सकता है, सम्यक्त्व लेकर जाएगा यहाँ वाला तो देव में जाएगा बिना सम्यक्त्व छूटे, क्योंकि वैदिक सम्यक्त्व के साथ तो जा सकता है वो, आयु पहले बंदी हो या बाद में बंदी हो। पहले बंदी हो तो कोई सवाल नहीं, समय तो होने के बाद तो देवायु ही बांधेगा जो मनुष्य है वो। करना नियोग के ऐसे जो नियम है वो अकाट्य है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं।
साथ में ये भी बता दीजिए कि जो समय तो के पहले या बाद में देव की आयु बांधता है, देवायु बांधता है, तो उसके अनुव्रत या महाव्रत पालन करने के परिणाम होते हैं।
वो तो क्या श्रेणी तक जाए से उपशम श्रेणी तक के परिणाम,
और
अन्य तीन आयु जिसने बांधी
बांधेंगे उनके तो पांचवा अनुष्ठान लेने के भी परिणाम होते हैं,
उसके व्रत के कोई परिणाम नहीं होगा।
आगे की बात छोड़ो, वो व्रत ही रहेगा, कोई संयम नहीं रहेगा, असंयम ही रहेगा, फिर भी समय व्यक्ति सही समझते।
अभी सैनिक राजा की बात करते हैं ना, अभी उदाहरण देते हैं हमेशा कि उसके सत्ता में नरकायु बंदी पड़ी है तो उसको ये व्रतों के परिणाम बिल्कुल नहीं होंगे, अनुव्रत के भी नहीं होंगे। ऐसे ही जिसने मनुष्यायु ऑलरेडी बांधी है उसके भी पंचम गुणसारिणी में अनुव्रत के परिणाम नहीं होंगे, जिसने तिरियंचायु बांध ली ऑलरेडी उसके भी अनुव्रत के परिणाम नहीं होंगे। ये तो ऐसे कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज होते हैं। हाँ, उसके समय तो होने में कोई बाधा नहीं,
कर्म उसको कुछ नहीं करता, आयु कर्म सहज ऐसे जीव।
थोड़ा दूसरा सवाल मुझे हुआ, माने
आपके
ऐसे भाव नहीं होगे कि उसको उसको पांचवा पुरस्कार नहीं होगा। माने ये दो में फर्क ये है कि जैसे एक द्रव्य लिंग की मुनि है तो सातवां पुरस्कार के लिए योग्य भी, माने छठा पुरस्कार के योग्य भी मुनि व्रत पालता है बाहर से। ऐसे ये जीव है उसके परिणाम माने ऐसे नहीं होंगे, उसका क्या मतलब है कि परिणाम बाह्य परिणाम अगर वो करे भी तो भी उसका पांचवे गुणस्थान का भाव नहीं होगा, ऐसा है?
पांचवे गुणस्थान का
उसके परिणाम भी नहीं होंगे व्रतों के पालने के,
बाह्य व्रतों की नहीं पालने
भी नहीं होगा, सुसुप्योग
तो नहीं
होगा। वो तो केवल मिथ्या दृष्टि की बात है, बाह्य व्रतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी बाह्य व्रत करके स्वर्गों में चला जाता है, और ये तो जाने वाला है मनुष्य तीर्यंचे नरक में।
अच्छा करते हैं, आपको जो प्रश्न होता है वो
नहीं, नहीं पूछना, प्रश्न
सदानंद को प्रश्न होता है वो नहीं पूछते हो, अच्छा समझते।
यहाँ क्या कहते हैं,
उनका पकड़ ज्यादा है मेरे से,
मैं जो कह रहा हूँ आप नहीं समझे, आप तो आपने प्रश्न पूछोगे ना, अन्य का थोड़ी पूछोगे।
यहाँ तो कहते हो तो उसके समय दृष्टि है, पुण्य बांधा है, समय दृष्टि के जो पुण्य बनता है सातिश्य पुण्य कहते हैं, तो उससे महर्दिक देव, महर्दिक यानी महा रिद्धिधारी देव, महर्दिक का अर्थ क्या है, महान रिद्धि वाला, रिद्धि से अर्धिक ऐसा शब्द तैयार हुआ। कल्पवासी क्यों कहा, एक होते भुवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये भौनत्रिक कहते हैं, और उनको छोड़कर बाकी विमानवासी कहते, वैमानिक देव कहते, वैमानिक देव में भी नीचे के जो 16 स्वर्ग है उनको कहेंगे कल्पवासी, और ऊपर ग्रेवेक वगैरह ऊपर है उनको कहेंगे कल्पातीत, क्योंकि वहां प्रत्येक एक एक जीव अब स्वयं इंद्र है, अहम इंद्र कहेंगे। नीचे के देवों में स्वामी सेवक भेद है, ऊपर ऐसा नहीं है, तो इसलिए यहां कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि देव इनका पदों को यथेष्ट भोग कर मोक्ष पद को प्राप्त होता है, ये बात यहां बताना चाहते हैं। परंतु अपात्र को दान देना व्यर्थ है। हाँ हाँ, वो अपात्र बताएंगे, कुपात्र तो बता दिया, अभी कुपात्र क्या अपात्र का दोनों कहेंगे विशेषण। मुनि को उत्तम पात्र, अनुव्रति श्रावक को मध्यम पात्र, सम्यक दृष्टि को जघन्य पात्र, सम्यक दर्शन से रहित व्रति को कुपात्र। क्या कहा, सम्यक दर्शन नहीं है परंतु व्रत धारण किए है उसको कुपात्र, तथा सम्यक दर्शन भी नहीं और व्रत भी नहीं है, आपका पत्र था ना, प्रश्न था ना, तो उसको अपात्र कहते हैं। अमित गति आचार्य ने अपने श्रावकाचार में उत्तम पात्र का स्वरूप विस्तार से बतलाते हुए लिखा है, वह उत्तम पात्र जीवस्थान गुणस्थान मार्गणास्थान के भेदों को जानकर जीवों की रक्षा करता है। ये अकेले उसने ऐसे ही अंगीकार नहीं, उसने कहा ये ऐसा मत करो और हमने पाला तो उसको कहेंगे, उसको सही व्रत भी नहीं कहेंगे। उन्होंने जीवस्थान यानी जीव समास आपको तो मालूम नहीं, जीव समास क्या होते हैं आपको याद है, जीव समास कौन कौन से, हाँ 14 जीव समास, बोलो बहुत अच्छा, हाँ बोलो बोलो, हाँ देखो 14 जीव समास आपको मालूम है, हाँ एक इंद्रिय में दो भेद है, सूक्ष्म और बाघ, पर या बाद में सबको एक साथ देना, पहले 7 भेद करो, हाँ एक इंद्रिय सूक्ष्म बादर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, हाँ असंग, ये 7 भेद हुए मूल में, सबके पर्याप्त और सबके अपर्याप्त, अपर्याप्त ने लब्धि अपर्याप्त सबके, तो कितने हुए 7 × 2, 14, हाँ 14 हो गए ना, इसको कहेंगे जीव समास। तो कौन से जीव कहाँ रहते हैं, कैसी स्थिति में रहते हैं, उनकी क्या क्या यानी उत्पत्ति स्थान कैसे होते हैं, ये सब जिसको मालूम है वो उनकी रक्षा का परिणाम यानी उनकी हिंसा टाल कर उसका सब आचरण होगा। तो कहते जीव स्थान जानता है, गुणस्थानों को जानता है, मार्गणा स्थान के भेदों को जानता है, ये मार्गणा ने कितनी कौन कौन सी गतियां हैं याद है, थोड़ी थोड़ी याद है।
यहाँ पर हम जिस स्थान की बात करेंगे, जिस स्थान में ये बात बता रहे हैं कि हमको तो बोल दिया किसी गुरु ने कि रात्रि भोजन मत करना, हमको इतना आज्ञाकारी थे कि साहब बराबर है, आप कहते तो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, तो हमने नक्की किया कि रात को भोजन नहीं करेंगे। लेकिन वो क्यों नहीं करना, वहाँ कौन से जीवों की हत्या हो सकती है जिसको हम टाल सकते हैं, रात्रि भोजन में दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों की हत्या हो सकती है तो उसको हम टाल सकते हैं, एक इंद्रिय नहीं क्योंकि जो हम आना जाना चाहते हैं तो एक इंद्रिय है कि ये है, तो ये जानकर हम वो पालन करेंगे तो हमारे परिणाम में उतने मृदु रहेंगे। ये बहुत बार मैंने बताया फिर भी अभी आपको बताना चाहता हूँ। मैं मेरे मित्र के घर में गया था, वो जानता था कि जैनिज्म की बहुत बातें जानता है, तो हमको आप जैनिज्म सिखाएंगे क्या, और यहाँ का क्लास होने के बाद रात को ही जाएंगे ना मिलने को, कभी जाएंगे पूरे दिन में, तो खाना खाने बैठे हम बाद में बैठे थे क्योंकि हम तो खाते नहीं, वो जानता था। तो इतने में क्या हो गया कि उसके टेबल पर ऐसे चीटी होती है ना तो लाइन लगी, एक के बाद उसके ध्यान में आया, उसने ऐसा पकड़ा खटक 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 एक लाइन में सबको उड़ा रहा, तो उसको जैन एकदम सिखाना कि नहीं सिखा पात्र ही क्या पहले ये नक्की कर, मुझे क्या कहना है जब पता लगेगा कि इसमें जीव है और हम उसको नहीं मारना चाहिए क्योंकि कल होंगे इसमें कितने भव्य है जीव, कल होंगे मोक्ष भी जाएंगे और उस जीव को हम खत्म कर देंगे, मुझे क्या कहना है कि ये जब जीव स्थान जानते हैं भाई, ये 14 समास को हम जानते हैं तो उससे हमारे ज्ञान में काफी चीजें झलकती है कि जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे जीव हैं और कौन कौन से अवस्था में रहते हैं और हमें उनकी हिंसा से कैसा अपने को बचाना है, ये नक्की होता है।
यानी ये करणान योग का अभ्यास करके इन्हें वेदों को जानकर जीवों की रक्षा के प्रणाम करता है ना।
देखो और एक बात बताए, देखो मेरा तकलीफ हो गया आपको, तकलीफ क्या होगी, सुनो सुनो ड्रम स्टिक को क्या बोलते हैं
आप,
सरगवानी सिंह, सरगवानी सिंह तो सिंह होती है उसके बीच में जहाँ ऐसा झाड़ा होता है उसके कांट होते हैं और उसके अंदर उसका बीज है, उस बीज के अंदर भी
ये तो हर भी अगर काटेंगे तो अंदर पता चलेगा अंदर है कि नहीं, कहाँ देखना जीवों को वो भी है ना, जैसे हम भिंडी में तो सामने दिखती है वो पापड़ी वगैरह होती है उसमें भी पता चलता है कि बी के अंदर है, तो इसके तो वो बी कहाँ अंदर होता है, उसके अंदर वो अगर काट के देखे तो अभी सीताफल है उसका वो नीचे ऐसे थोड़ा अलग करो तो उसमें कितनी ये निकलती, पता नहीं कहाँ जीव रहते हैं कहाँ क्या होते हैं। चलो चलो अपनी आगे बढ़ेंगे, सूर्य की तरह परोपकार में तत्पर रहता है, ये उत्तम पात्र का लक्षण चल रहा है, हितमित वचन बोलता है, परधन को निर्माल्य की तरह मानता है, निर्माल्य समझते हैं जो चढ़ाते हैं ना हम, निर्माल्य किसको कहते हैं जो पूजा में हम चढ़ाते हैं तो चढ़ाने के बाद उसको निर्माल्य कहते हैं, उसको तो हम अपने यूज में तो नहीं लेते खाने पीने, वो तो देते हैं किसी को, तो कहते हैं परधन को निर्माल्य की तरह, नहीं वो परधन के लिए उनके तो धन की तो कोई बात ही नहीं, इच्छा ही नहीं चाह ही नहीं, दुनियों की बात चल रही, उत्तम पात्र का ही बात चल रही। दांत साफ करने के लिए तिनका तक नहीं उठाता, उनके तो अदंत धोवन होता है ना, पशु मनुष्य देव और अचेतन के भेद से चार प्रकार की नारियों से ऐसे दूर रहता है मानो वे महामारी हो, महामारी नहीं वो भयंकर बीमारी, पशु यानी तिर्यंच की स्त्री, मनुष्य की देवी और अचेतन यानी वो स्त्री के चित्र, उसके कोई पुतला होगा कोई उसकी स्टैचू है कुछ भी, ये छोटी छोटी ऐसे डॉल्स बनाइए ऐसे कुछ भी, इनके संसर्ग से भी दूर है यानी उनके चित्र भी देखना, ग्रहण करना, हाथ में उठाना, इसे नहीं रहते। ये तो ब्रह्मचर्य महाव्रत है ना उनका, प्रासुक मार्ग से। ये प्रासुक मार्ग है ना, क्या अभी रस्ते क्या धोते हैं क्या उनके लिए? देख कर चलते हैं, परंतु मार्ग भी प्रासुक कहलाता है ना। हाँ देखो, सूर्योदय होने के बाद जिस रास्ते पर लोग आना जाना चलता है, लोग जाते आते हैं, रथ पूर्व के जमाने में रथ के, अभी हम कहेंगे गाड़ियां चलती है, वाहन चलते हैं, तो उस रास्ते को प्रासुक कहा जाता है। देखो प्रासुक, ये जो चरणान योग के ग्रंथों में जो बताया जाता है प्रासुक, वही है प्रासुक। वहां ऐसा नहीं कि इसमें क्या जीव जंतु नहीं है क्या, या इतनी सारी चीजें पड़ी है तो उसमें क्या जीव नहीं होते क्या, वो बात नहीं है। उसके लिए प्रासुक कौन कहेगा, तो जिसपे आवागमन होता है जीव लोगों का, उसको प्रासुक कहने में आता है। तो प्रासुक मार्ग से, जैसे हम कहते ना जल को भी प्रासुक करने की विधि क्या है, तो उसको छाना जाता है, तो छानने पर क्या नीचे जीव नहीं आते, फिर भी वो चरणान योग की आज्ञा है वो प्रासुक। अभी उसमें कुछ लौंग डालते हैं या कुछ, हाँ वरी वाली, तो उसका कोई भी वर्ण बदले, स्वाद बदले, तो वो 6 घंटे के लिए प्रासुक माना जाता है। ये तो चरणान योग के ग्रंथों के अनुसार जो प्रासुक की विधि बताई है उसको प्रासुक, वहां अपना तर्क नहीं लगाना। तो यहाँ प्रासुक मार्ग की बात है। प्रासुक मार्ग से 4 हाथ भूमि देख कर जीवों की रक्षा करते हुए गमन करता है, यानी भले प्रासुक है फिर भी नीचे देख देख कर चलते हैं, कोई जीव बीच में नहीं आवे पैर के नीचे, यानी सावधानी पूर्वक चलते हैं, यानी रस्ते में चलते हुए इधर क्या है वहां क्या है, कौन सी दुकान नहीं लगी है क्या, सामने से कौन आता है, ऐसा नहीं, सामने जमीन की तरफ देख। और चलते समय बोलते भी नहीं है, कोई उनके साथ श्रावक चलते हो या अन्य मुनि, मौन से चलते। 46 दोषों को टालकर 9 कोटि से विशुद्ध आहार करता है। ये हमने बहुत बार देखा था पहले भी, वो ग्रंथों में से पढ़ के बताया था, प्रवचन सार में हमने देखा ना, वो चरणान योग चूलिका के समय बहुत विस्तार से इसकी बात की थी। और सरस तथा विरस, सरस यानी रस वाला, या निरस यानी बिना रस वाला, कोई सूखा वगैरह, आहार में समान बुद्धि रखता है। हो गया टाइम, प्रत्येक वस्तु को सावधानी के साथ रखता तथा उठाता है, किसी को बाधा न पहुंचाते हुए प्रासुक तथा गुप्त स्थान में मलमूत्र करता है। ये 5 समितियों का वर्णन है। चंचल चित्त को वश में रखता है, कर्मों के क्षय के लिए कायोत्सर्ग करता है, यानी काय से उत्सर्ग, यानी उसमें से अपनापन छोड़ देना, अपनापन तो है ही नहीं उसमें, उसका लक्ष्य भी छोड़कर आत्मा में स्थिर होना, उसको कायोत्सर्ग कहेंगे। कृत्य और अकृत्य को जानते हैं, करने जैसे कार्य और न करने जैसे। इस प्रकार जो सम्यक रूप से व्रत समिति और गुप्ति को पालता है वह उत्तम पात्र है। अब यहाँ रुकेंगे हम, मध्यम पात्र की बात आगे देखेंगे कल। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देतहु।